आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज महाकुंभ में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 54 मंत्री बैठक में होंगे शामिल। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से चलाई जाएंगी 400 से अधिक विशेष ट्रेनें। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक कल लखनऊ में संपन्न। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, बजट सत्र के दौरान संसद में पेश होगी रिपोर्ट। और अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण कार्य को मार्च तक पूरा कराने की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार की विशेष कैबिनेट बैठक आज प्रयागराज में होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए सरकार के 54 मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले यह बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होनी थी, लेकिन महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए बैठक स्थल बदल दिया गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक दोपहर में अरैल क्षेत्र के त्रिवेणी संकुल में होगी। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। बैठक के बाद सभी मंत्री अरैल वीआईपी घाट से मोटर बोट द्वारा संगम तक जाएंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ और मंत्रिमंडल के सदस्य त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। 2019 में भी कुंभ मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और अन्य संतों के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई थी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
केंद्रीय पर्यटन और संस्कृत मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचेंगे। इस अवसर पर श्री शेखावत मेला क्षेत्र में श्रीमद् भागवत पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। इसके उपरांत वह संस्कार भारती पवेलियन और शोभा यात्रा का भी शुभारंभ करेंगे। 23 जनवरी को श्री शेखावत जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से विशेष ट्रेनें चलाएगा। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में इन विशेष रेलगाड़ियों के बारे में जानकारी दी।
जो ये आंकड़ा दिया गया है कि 8 से 9 करोड़ लोग स्नान करेंगे, तो रेलवे की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे मौनी अमावस्या के जो D-1 से D+2 डे जो पीक डेज होते हैं, इनमें हम लोग 400 से अधिक मेला स्पेशल गाड़ियों का संचालन करेंगे।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री त्रिपाठी ने यात्रियों से अपील की कि वे अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए निर्धारित रेलवे स्टेशनों से ही यात्रा करें।
बनारस डायरेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग रामबाग और झूसी स्टेशन से ही अपनी ट्रेन पकड़ें, ताकि इसके कारण फलाभ ये होगा कि प्रयागराज जंक्शन की तरफ आने वाले लोगों की संख्या भी कम होगी और यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन के लोगों के लिए अधिक स्पेस क्रिएट हो सकेगा और हम दूसरी डायरेक्शन की अधिक ट्रेन चला सकेंगे।
इस बीच रेलवे द्वारा आज भी करीब 1 दर्जन से अधिक महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इनका विवरण रेल मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दिया गया है। प्रदेश सरकार का अनुमान है कि इस बार मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। प्रदेश के मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर और कौशाम्बी जिलों से होते हुए हरियाणा रोडवेज की विशेष बस प्रयागराज महाकुंभ नगर आएगी। यह विशेष बस सेवा महाकुंभ के लिए हरियाणा के पलवल डिपो से शुरू की गई है। यह बस प्रतिदिन सुबह 8 बजे पलवल बस डिपो से प्रयागराज के लिए रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8 बजे प्रयागराज से वापस जाएगी। यह बस सेवा 29 फरवरी तक जारी रहेगी। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पवित्र संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में कल जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू भी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ आना उनके लिए सौभाग्य की बात है।
और लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ और अभी मैं आया हूँ, अभी यहाँ पर स्नान होगा, दर्शन भी होंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति JPC की बैठक कल लखनऊ में हुई। बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं और संगठनों से विधेयक के संबंध में सुझाव और आपत्तियां मांगी गईं। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए JPC के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि यह कानून बेहतरी के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह समिति अपनी रिपोर्ट संसद के बजट सत्र में पेश करेगी।
इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हम 31 से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसमें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने अपने माननीय सांसदों से इस पे संशोधन मांगा है। जो भारत सरकार ने प्रपोज 44 अमेंडमेंट किया है उस पे हमारे जो अंतिम सभी सदस्यों की लिखित क्या राय है उसके लिए फिर हमने कल तक का टाइम दिया है और फिर 23 तारीख को उन सारे संशोधन को हम सर्कुलेट करेंगे और 24-25 को दिल्ली में बैठक करेंगे।
बैठक में कमेटी ने मंत्री दानिश आजाद अंसारी, मंत्री OP राजभर और शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से भी सलाह ली। बैठक में JPC अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और सदस्य असदुद्दीन ओवैसी समेत कुल 11 सदस्यों ने हिस्सा लिया। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर संबंधी निर्माण कार्य मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि द्वितीय तल के गर्भगृह में आसानी से उपलब्ध न होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रामायण को रखा जाएगा।
हम भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल और उसके मंदिर के अंदर आइकोनोग्राफी, अन्य क्लैडिंग सभी मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी अवधि में प्रथम तल पर जो राम दरबार वहां पर प्रतिष्ठा की जाएगी वह भी पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार जो द्वितीय तल है जिसमें गर्भगृह है वहां पर यह निर्णय वर्तमान में है कि जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रामायण पुस्तिका जो सामान्य रूप से प्रचलित नहीं बल्कि कहीं कहीं पर उपलब्ध है उसे हम प्राप्त करेंगे और उसे हम द्वितीय तल के गर्भगृह में रखेंगे।
संभल जिले में बीते नवंबर में सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की टीम ने कल हिंसा ग्रस्त इलाके का दौरा किया। आयोग ने अधिकारियों और स्थानीय लोगों से बात कर घटनाक्रम की जानकारी ली। जांच आयोग में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश DK अरोड़ा, पूर्व DGP AK जैन और पूर्व अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद शामिल रहे। शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र में स्पेशल टास्क फोर्स STF ने 1 लाख के इनामी अरशद और उसके 3 सहयोगियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। सहारनपुर रेंज के DIG ने बताया कि STF की मेरठ यूनिट द्वारा सोमवार की रात में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान हरियाणा से आने वाली एक गाड़ी को रोकने पर गाड़ी से फायरिंग शुरू हो गई जिसमें एक इंस्पेक्टर भी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश मारे गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत अधिकांश जिलों में कोहरा और आसमान में बादल छाए रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तापमान में गिरावट के कारण लोग ठंड से परेशान हो रहे हैं। कोहरे के चलते हवाई, रेल और सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 54 मंत्री बैठक में होंगे शामिल। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयागराज क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से चलाई जाएंगी 400 से अधिक विशेष ट्रेनें। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक कल लखनऊ में संपन्न। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, बजट सत्र के दौरान संसद में पेश होगी रिपोर्ट। और अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण कार्य को मार्च तक पूरा कराने की तैयारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।